તારીખ 30/12/1996 શ્રી સમયસર કલશ ટીકા શ્લોક 4 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું બાંધણીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 20 મૂળ કેસેટમાં અવાજ ધીમો છે તથા હમિંગ છે.
लिखा गया है उसमें अपने शुद्धात्मा समय साधना में शुद्धात्मा इसलिए नमस्कार किया है कि उसमें ज्ञान भी है और सुख भी है. और नमस्कार करने से हित होता है और अहित का नाश होता है. इस प्रकार प्रयोजन को देख करके शुद्धात्मा को नमस्कार किया है. सामान्यतया मंगलाचरण में किसी ने किसी इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है, परंतु यहाँ पर किसी देव को व्यक्ति को नमस्कार नहीं करके आचार्य श्री ने अपने शुद्धात्म स्वरूप को नमस्कार किया है. इसके पीछे प्रयोजन वो है कि इससे अपना हित होता है और साथ साथ वो बात भी ले ली कि जीव अन्य पदार्थ के प्रति झुकता है, नमन करता है और खास करके अजीव के प्रति, जड़ पदार्थ के प्रति उसका झुकाव है और इस कारण से वो संसार में दुखी हो रहा है, आकुलता होती है, उसका निषेध किया है कि ऐसा तो नहीं करने लायक है और अपने आत्मस्वरूप को भी उसमें भी झुकना चाहिए और उससे ही हित होता है, सुख होता है. यही कारण है. अध्यात्म प्रधान ग्रंथ होने से कुछ विशेष बातें जो लिखी है राजमल जी ने, उसमें वो बात लिखी है कि अपने शुद्धात्मा के सिवा सब हम अपने लिए जीव नहीं है. पांच तो अजीव पदार्थ है ही, लेकिन दूसरे संसारी जीव भी अजीव है. जीव क्योंकि दूसरे संसारी जीव में किसी न किसी जीव के प्रति हमें अपनत्व रहता है और वो भी दुख का कारण बनता है. इसलिए ऐसे झुकाव का भी निषेध किया है. इससे आगे जाकर के अंत में वहां तक लिख दिया है कि पांच अजीव और सभी संसारी जीव वो तो नमस्कार करने लायक है ही नहीं, क्योंकि उसमें ज्ञान भी नहीं है और सुख भी नहीं है. लेकिन उन पांच छह द्रव्यों अपने को छोड़ करके इन छह द्रव्यों को जानने वाले जाननहार को ज्ञान भी नहीं है, वो बात विशेष नहीं. तो जानने वाले को ज्ञान क्यों नहीं? सुख नहीं होता है क्योंकि प्रसन्नता दूसरे को जानने में क्या सुख हो सकता है. लेकिन जानने में ज्ञान क्यों नहीं? कि जो ज्ञान सुख को उत्पन्न नहीं करे, जो सुख के लिए बेकार है, उसको ज्ञान क्या कहें। अध्यात्म में तो अपना सुख का प्रयोजन को सिद्ध करे, प्राप्त करे, उसे कोई ज्ञान कहते हैं। दूसरे ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते हैं। मंगलाचरण होने से देव गुरु शास्त्र की चर्चा नहीं होती। सिर्फ पांच द्रव्य, जीव द्रव्य और दूसरे संसारी जीव लिए हैं, देव गुरु शास्त्र नहीं लिए। वो बात नहीं है। एक अपना शुद्ध जीव स्वरूप को ज्ञान भी है और सुख भी है, और उसको जानने से, अपने स्वरूप को जानने से मैंने अनुभव करने से, जानने वाले को सुख भी होता है और ज्ञान भी होता है। इसलिए शुद्ध जीव, जिसको समय कहने में आता है, उसको सारपना घटित होता है। समय सार ऐसा शास्त्र का नाम है। उसको समय सार क्यों कहा? कि अपना शुद्ध जीव स्वरूप है, जो सारभूत है, उसी को दिखाने का, बताने का जिसमें प्रयोजन है, इसलिए शास्त्र को भी समय सार नाम दिया है। वास्तव में समय सार तो अपना शुद्धात्मा है। ये कल जो विषय चला है, संक्षेप है, आगे है। चार नंबर के कलश में नए विरोध का समाधान किया। ऐसे तो आत्मा में जो अनंत धर्म है, उसमें कुछ एक धर्म ऐसे हैं कि जो परस्पर विरुद्ध है। जैसे आत्मा में अशुद्धता है तो शुद्धता भी है, आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है, एक रूप अभेद भी है और अनेक रूप भेद वाला भी है। उस प्रकार से विरुद्ध धर्म को जानने वाला ज्ञान भी है। विरुद्ध धर्म है ऐसा कैसा मालूम हुआ? तो उसको जानने वाला ज्ञान भी है। जो ज्ञान जिस धर्म को जानता है, उस ज्ञान को उसी धर्म का नाम दिया गया है। क्योंकि शुद्धता को जानने वाले को शुद्ध नहीं कहते हैं, अशुद्धता को जानने वाले को अशुद्ध नहीं कहते। द्रव्य को जानने वाले को द्रव्यार्थिक नहीं कहते हैं, पर्याय को जानने वाले को पर्यायार्थिक नहीं कहते ऐसे। अब इसमें बहुभाग जीवों को तकलीफ होती है कि ये परस्पर विरुद्ध बातें ज्ञान मार्ग में आती है, तो कई प्रकार की उलझन पैदा होती है। ये उलझन नहीं होने के लिए आचार्य श्री ने इस कलश को लिखा है। कि जो जीन वचन है वो दो नहीं से प्रवर्तित प्रवृत्ति करता है, फिर भी दो नहीं का विरोध है उसका नाश भी करता है। जीन वचन है तो परस्पर विरुद्ध दो नहीं में प्रवर्तित भी करता है, फिर भी परस्पर विरोधिता का नाश भी करता है। यही सारांश है इस कलस का। जनयो विरोध ध्वंसिनी शात प्रदान्ते भवचस्य अनन्ते स्वयं वां दर्मोहा सपदि समय सारन्ते परं ज्योतिर्युच्यते भगवान् पक्षाक्षमशतं एव। खंडानी स्लीपर ये समय सारम की क्षण के आसन भव्य जीव के मैंने कहा कि जिसका संसार का संसार सागर का किनारा नजदीक है तो संसार सागर तीरते हुए किनारा के समीप आ गया है उसको कहते हैं आसन्न भव्य जीव। आसन्न मैंने नजदीक आना, भव्य मैंने भव्यता के समीप आना। ऐसे जीव शुद्ध जीव को प्रत्यक्ष बने से प्राप्त करते हैं, प्रत्यक्षता को पाते हैं। कैसे जी कि जिनको अभी संसार ज्यादा बाकी नहीं है ऐसे जी अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव पामते हैं। मतलब क्या है अनुभव करना? उसी का नाम प्राप्त करना है। अनुभव में ही स्वरूप की प्राप्ति है, और कहीं जगह स्वरूप की प्राप्ति नहीं है। वो तो है फिर भी नहीं है कि बराबर। सपदि मैंने अल्पकाल में थोड़ा ही काल में वे आसन भव्य जीव शुद्ध जीव को प्रत्यक्ष तौर से प्राप्त करते हैं। अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान में अनुभव होता है, वस्तु भी स्वरूप भी प्रत्यक्ष है और इसका अनुभव करने वाला ज्ञान भी प्रत्यक्ष है। अल्पकाल में प्राप्त करते हैं अपने स्वरूप को। जिस स्वरूप को प्राप्त करता है वो शुद्ध स्वरूप शुद्ध जीव स्वरूप कैसा है कि अतिशयमान ज्ञान ज्योति है। जीव है वो क्या है? ज्ञान की ज्योति है। जैसे कोई दिया की ज्योति जलती है वैसे अंदर में भी ज्ञान की ज्योति प्रत्येक जीव को जलती रहती है, स्फुरायमान होती रहती है। देखो है कि नहीं है? नजर में नहीं आती हो और ध्यान से देखो, गौर से देखो, अंदर में ज्ञान ज्योति जाज्वल्यमान ज्ञान ज्योति अतिशयमान ज्ञान ज्योति है। क्यों उसको अतिशयमान कहा है? कि हमारे प्रत्येक प्रदेश से ज्ञान परिणाम कर रहा है। एक भी ऐसा प्रदेश खाली नहीं है कि जहां से ज्ञान नहीं होता। बताइए कहीं भी इंजेक्शन की सुई लगती है मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता। अरे एक चींटी भी कहीं चलती पता चल जाता कि नहीं पता चल जाता। क्यों? कि भीतर में लबालब ज्ञान भरा हुआ है, आत्मा में लबालब ज्ञान भरा हुआ है। तो हर प्रदेश से तूफान आता है, उस तरह से बाहर निकलता है, उसको कोई रोक सकते रोक लो। एक सेकंड के लिए अपने ज्ञान को रोको, नहीं रोको। ऐसे शुद्ध जीव है वो अतिशयमान ज्ञान की ज्योति है, अतिशय ज्ञान ज्योति।
अतिशय मान शब्द का अतिशय, अतिशय मान शब्द के मतलब
मान मैंने जिनके कोई आदमी ज्ञान है तो ज्ञानवान बोलते हैं, ऐसे जिसको ज्ञान है उसको क्या बोलते हैं? ज्ञानवान। इसमें जिसमें अतिशय है उसको अतिशय मान कहते हैं। इस तरह से
जैसे अतिशय अच्छे अतिशय मान
अतिशय वाला
बुद्धिमान
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 बुद्धिमान बुद्धि वाला बुद्धिमान कहते हैं।
स्ट्रेस करवा माटे अतिशय मान से वधारे पड़तो भार आपवा माटे अतिशय अतिशय मान
उस वाला है, बुद्धि वाला है तो बुद्धि बुद्धिमान कहते हैं। ऐसे अतिशय है तो अतिशय मान। अतिशय क्या है? कि दूरवर्ती क्षेत्र, दूर के क्षेत्र को और दूर के काल भूत और भविष्य को जान लेता है। इधर बैठ करके कहीं आना जाना पड़ता नहीं, नहीं। जैसे हिमालय के शिखर को देखते हैं दूर से, कहीं माइलों दूर से देखते हैं, वहां जाना पड़ता है क्या? ज्ञान को वहां जाना पड़ता है और नाप लेता है कितना बड़ा थोड़ा ऊंचा पर्वत है, कि पेट्रोलियम निकलता है 2000 मीटर भूगर्भ में से निकलता है। ज्ञान वहां जाने बिना बोल देता है कि इतना करोड़ इतना लाख घन मीटर पेट्रोलियम उधर डिपॉन होते हैं, ये चमत्कार। ये तो लौकिक ज्ञान का चमत्कार, मलिन ज्ञान का चमत्कार, जो विषय प्रसाय में जुड़ा हुआ है इसकी उतनी सामर्थ्य है। तो निर्मल हो जाए तो कितनी सामर्थ्य इसकी हो, एक समय में लोकालोक को जाने, तीन काल को एक समय में जाने, कितना अतिशय है। तो रिधि सिद्धि में बहुत सी बातें आती हैं, फिर ज्ञान की लब्धियां होती है। तो प्रसिद्ध हो गया बेंच विकास नाम ज्ञान गई हो, बहुत से दूरवर्ती क्षेत्र वो देखते थे, महाविद्य क्षेत्र में भी ज्ञान का क्षेत्र को देखते थे। तो ज्ञान की लब्धियां नजर बैठे बैठे देवलोक को भी देखते हैं। सूर्य चंद्र तारा कितने दूर है, लाखों योजन दूर है, यहाँ बैठ करके देखते हैं कि नहीं देखते। और ये तारा सूर्य चंद्र उसके ग्रह नक्षत्र से इनका पृथ्वी पर क्या क्या इफेक्ट आता है, व्यक्तिगत इफेक्ट क्या आता है मालूम पड़ता है कि ज्ञान अतिशय मान ज्ञान और कैसा है? अनादि सिद्ध है, सिद्ध स्वरूप भी है और अनादि स्वरूप का नया कभी नहीं बनाया। कोई आत्मा को किसी भी व्यक्ति ने, शक्ति ने, परमेश्वर ने बनाया नहीं है। विश्व में अनंत परमाणु है, अनंत जीव है, उसकी संख्या में कमी बेसी कभी नहीं होती। एक परमाणु और एक जीव नया पैदा नहीं होता, एक परमाणु और जीव का कभी नाश भी नहीं होता। अवस्था से अवस्थांतर, रूप से रूपांतर होता रहता है। इसलिए हमारा शुद्धात्मा भी अनादि से सिद्ध है, अनादि से मौजूद है। अनुभव का अर्थ क्या है और कैसा है? अनय पक्षा क्षुणम, अनय पक्ष मैंने मिथ्यावाद, और नहीं मैंने मिथ्यावाद उससे अखंडित है। अक्षुणम अक्षुण रहा है, कभी खंडित नहीं हुआ। क्या कहना चाहते हैं? जो आत्मा को नहीं जानने वाले अनजाने लोग हैं, वो आत्मा के विषय में बहुत सी बातें करते हैं, आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, फिर भी आत्मा जैसा है वैसा ही रहा है, कभी खंडित अनजाने लोग आत्मा को अन्यथा कहें तो आत्मा अन्यथा हो जाता है क्या? ऐसा नहीं होता। कोई हीरे को पत्थर कहे, कांच के टुकड़ा कांच का टुकड़ा बोल दे तो क्या हो जाता है क्या? हीरे को कांच मान करके फेंक दे तो क्या हीरा का कांच हो गया? चांदी पर रुपये का, पहले तो चांदी के रुपये होते थे, मोहर नहीं लगाई तो चांदी की कीमत चली गई क्या? और कले पर रुपया की मोहर लगाई तो क्या उसकी कीमत चांदी की हो गई क्या? तो झूठ कहने से वस्तु का स्वरूप नहीं बदलता, ऐसे वस्तु है वैसे है। ऐसे आत्मा के विषय में झूठ कहने वाले, मिथ्या ज्ञान वाले अनजाने लोग कुछ भी कहें, वो आत्मा जैसा है बसा रहा है, किसी से खंडित नहीं हुआ। भावार्थ ऐसा है कि मिथ्यावादी, बौद्ध आदि मैंने अन्य मत वाले झूठी कल्पना बहुत प्रकार से करते हैं कि आत्मा ऐसा है और वैसा है, तो भी वे झूठे ही हैं, वे ही झूठे हैं। आत्म तत्व जैसा है वैसा ही है, उसमें कोई प्रकार किसी के कहने से हो जाए ऐसा तो नहीं बन नहीं सकता। अब वे भव्य जीव क्या करते हुए शुद्ध स्वरूप को प्राप्त होते हैं? वे भव्य जीव क्या करते हुए अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर लेते हैं? अनुभव क्यों, क्यों, कैसे, क्या क्या करने से होता है? वही कहते हैं कि ये जीन वचन से रमनते, जो जीन वचन में रमते हैं उनसे तो शुद्धात्म स्वरूप का अनुभव होता है। क्यों? कि जीन वचन है वो शुद्धात्म स्वरूप को दिखाने वाला है। शुद्धात्म को किसने बताया? जिनेन्द्र देव के वचनों ने बताया, वो तो जानते थे अपने ज्ञान में। अगर ये वचन प्रकट नहीं होते तो कैसे हम जानते आत्मा का स्वरूप कैसा है, कैसे जानते जानने से। इसलिए भगवान के ज्ञान का तो उपकार है ही, लेकिन इनके वचन जो जिनवाणी है उसका भी उपकार है। इसलिए हम जिनवाणी को नमन करते हैं, मंदन करते हैं, पूजन करते हैं, यही काम से करते हैं। जिनवाणी की पूजा करना ये कोई रूढ़ि रिवाज नहीं है, रीति रिवाज का विषय। चलो हम तो जैनी लोग हैं तो जिनवाणी की पूजा करेंगे, फिर अपने अपने धर्मों में अपने अपने ग्रंथों की लोग पूजा करते हैं, लेकिन ये परंपरा जैनियों से चली। क्यों? तो शुद्धात्म स्वरूप को दिखाने इसलिए इसका भी उत्तर, क्योंकि भगवान तो केवल ज्ञान में ध्यानस्थ है, क्या पता चले आत्मा का स्वरूप का वो अनुभव कर रहे हैं, लेकिन हमको क्या पता चले। अगर इसकी वाणी नहीं होती तो क्या होता मालूम नहीं पड़ता। आत्मा कैसा है वो कुछ मालूम नहीं पड़ता। इसलिए दूसरे कलश ने उसको नमस्कार किया, दूसरे कलश ने उसको नमस्कार किया है, सरस्वती बोल करके उसको नमस्कार किया है। आसन भव्य जीव दिव्य ध्वनि, जीन वचन मैंने दिव्य ध्वनि द्वारा कही है, उपादेय रूप शुद्ध जीव वस्तु उसमें सावधानपणे से रुचि करते हैं, श्रद्धा करते हैं, प्रतीति करते हैं। बहुत अच्छा बात किया कि जो असंभवी जीव हैं वो क्या करते हैं कि जो दिव्य ध्वनि में क्या बात आई, दिव्य ध्वनि में तो हजारों बात आई है, उनकी बात नहीं किया। दिव्य ध्वनि में एक ही बात आई है, कौन सी, कि तुमको तमाम तुम्हारा शुद्ध जीव स्वरूप हमेशा उपादेय है, एक ही बात आई है। और वाणी को वाणी के द्वारा सुना तो उसमें जो सावधान हो गए, उपाधि हुए में अपने स्वरूप में सावधान हो गए, उसमें रुचि हुई, उसकी श्रद्धा हुई, उसकी प्रतीति की। ऐसे जीव शुद्धात्म स्वरूप का अनुभव कर सकता है। सिर्फ सुना नहीं, सुनने से सावधान भी हुए और श्रद्धा रुचि और प्रतीति भी की, और उनको अनुभव सुन करके चले गए, उनका उनको अनुभव नहीं हुआ, सुन करके सावधान भी कर। जैसे भगवान ने ये कहा, देखो भव्य, ये भव्य तुम मेरे जैसा ही ज्ञान स्वरूप भगवान हो, क्या तुम भी मेरे जैसे ज्ञान स्वरूपी भगवान, और उस बात का विश्वास करके, श्रद्धा करके, प्रतीति करके अंतर में सावधान हो गए, ज्ञान स्वरूप भगवान बाकी के साथ उनको शुद्धात्म स्वरूप का अनुभव हुआ। तो उस बात का विस्तार करते हैं यहाँ पर कि शुद्ध जीव वस्तु का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करें, इसका नाम रुचि, इसका नाम श्रद्धा, इसका नाम प्रतीति। श्रद्धा प्रतीति रुचि कहे किसको कहेंगे, कि प्रत्यक्ष अनुभव करे उसको। जिसको प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है उसको श्रद्धा रुचि प्रतीति। और कोई लंबी थोड़ी बात समझा सके, बता सके, कह सके, वो अनुभव करे वो। अनुभव प्रधान शास्त्र है, अनुभव की बात बहुत लिया है। भावार्थ ऐसा है कि वचन पुद्गल है, भगवान की वाणी भी पुद्गल परमाणु की रचना है। पुद्गल परमाणु की पर्याय है वो कोई जीव नहीं। वचन पुद्गल है, वो वचन की रुचि करने से स्वरूप की प्राप्ति क्या, वचन स्पीच कितनी अच्छी है, हमारी वक्तृत्व कला इसके स्वरूप, इससे स्वरूप की प्राप्ति नहीं है। कितनी भी वाणी अच्छी हो, आवाज अच्छी, आवाज अच्छा निकलता है, मीठा आवाज होता है, कहीं का आवाज मीठा होता है, सुस्वर जिसको कहते हैं क्या, जैसे कोयल बोलती है सुस्वर हुआ, और कौवा बोलता है उसको दुस्वर कहते हैं। होगा हिंदी में लिखा है कोई अध्यात्म की कोरी बात करता है, कोरी माने क्या, बात करता है उस अनुसार उसका कोई प्रयास प्रयत्न दशा नहीं हो, खाली बात करता है तो उसके लिए क्या बोले, तुमको तेरी वाणी काग पक्षी जैसी है, कठोर दुष्पर वाली है, और अनुभव रस से भीगी हुई जो वाणी है रस आता है। फिर भी वाणी का राग करने लायक नहीं है, इसलिए कहा कि भगवान की जो दिव्य ध्वनि है वो बहुत मधुर होती है। बहुत इतनी मधुर, इतनी मधुर कि जैसे कोई काम में अमृत की धार करते संभव शरण में जहाँ भगवान की वाणी चलती है, वहां कोई घंटों भर चले तो कोई खाने पीने को नहीं जाए, भूख नहीं लगे, तृषा नहीं लगे, लगे ही नहीं, इतना मीठा लगे, और किसी को नींद भी नहीं आती। रात को भी वाणी खुलती है, तो रात दिन का तुम्हें पता ही नहीं चलता, इतना तेज तेज है भगवान का, और समय स्वरण में तेजस्वी पदार्थ है, इस रात है दिन है इसका पता नहीं चले, और हर छह प्रवर के बाद वाणी चालू हो जाती, कभी भी चालू हो जाए, कभी भी बंद हो जाए, ऐसा तो है। क्योंकि जैसे यहाँ कोई पुण्यमन होता है तो गला अच्छा होता है, एक गीत गाने का हजारों रुपये ले लेते हैं, संगीत गाने का एक गाना गाते हैं तो सिंगर ले लेते हैं नहीं, ये जैक्सन क्या बोलता है, माइकल जैक्सन कितना पैसा देता है, तो गला फाड़ करके बोलता है कि इतना मधुर नहीं है, फिर भी क्रेज चला है तो क्यों नहीं मधुर ऐसा। भगवान तो सर्वोत्कृष्ट पुण्य का धारक है, कृष्ण कर दिया तो इनकी आवाज़ उतनी मीठी होती है जैसे कोई कान में अमृत धार करते, कोई खाने को नहीं जाए, पीने को नहीं जाए, नींद नहीं ले, कोई टट्टी पेशाब के लिए भी उठे, कोई हिले ही नहीं, हिल ही नहीं सकते, ऐसा हो जाता है। लेकिन वाणी का राग से स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती, फिर भी वाणी का राग से वाणी की रुचि होने से अनुभव क्योंकि वो तो पुद्गल है, अनुभव तो शुद्धात्म स्वरूप की जीव की रुचि से होता है, पुद्गल की रुचि से नहीं होता।
महावीर भगवान ने वाणी 66 दिवस की होती खड़ी है,
गंधर्वदेव नहीं थे उनके समान, सुनने वाले भी तो झेलने वाले को भी चाहिए, किसको सुनावे, कुदरत की ऐसे निकले ही नहीं। भावार्थ ऐसा है कि वचन पुद्गल है, उनकी रुचि करने से स्वरूप की प्राप्ति नहीं, इसलिए वचन द्वारा कहने में आई है जो कोई उपादेय वस्तु वचन का वाच्य उसका अनुभव करने से, क्या बात कहा कि वचन को मत पकड़ो, वचन के द्वारा वचन के वाच्य को ग्रहण करो, ये बात करते हैं। जैसे कोई चीज मीठी है तो उस चीज का नाम लेते ही उसका मीठापन का जो उसका स्वरूप है उसको ग्रहण करो, वचन में वो वस्तु नहीं है और वस्तु में वचन नहीं है, लेकिन वस्तु वचन द्वारा वस्तु का ज्ञान का ग्रहण होता है, ऐसा वो प्रैक्टिकल साइड है इसके। वचन है वो शब्द, शब्द का कोई अर्थ होता है तो शब्द साधक है और उसके द्वारा इसका अर्थ साध्य है, क्या साध्य है, अर्थ साध्य है, और अर्थ साधक होता है और उसका जो ज्ञान है वो तो ज्ञान रस उससे साध्य होता है। तो आत्मा शब्द जीव शब्द का एक अर्थ होता है, उस अर्थ के द्वारा उसका ज्ञान जो है उसका रसाना, आत्मा कहता आत्म रसाना चाहिए, आत्मा कहने पर सुनने पर आत्म रसाना चाहिए, तो ये पूछेंगे कि वो कैसा है, तो कोई गाली गाली देता है तो द्वेष का रस कैसे आता है, कोई हमारी निंदा करता है आप तो ऐसे हैं कैसे हैं, तो सुना तो शब्द लेकिन द्वेष का रस चढ़ जाता है क्या नहीं चढ़ जाता है,
तुरंत
है
तुरंत,
और झूठी प्रशंसा करते हैं तो भी है प्रैक्टिकल होता है कि नहीं होता है, उल्टा, ये उल्टा प्रैक्टिकल है वैसे। समय साल की कुंड कुंड आचार्य की पहली गाथा में क्या कहा, सुप्रसिद्ध परमात्मा कैसा है। क्या गाथा है, मंदिर तू सब सिद्धे, मंदिर तू सब सिद्धे ध्रुवम अचलम गई पत्ते, मुच्छा में समय पावड़ मीनम केवली सूर्य केवली भूमि। तो वहां क्या क्या अमृतचंद्र आचार्य के काम है। तो मेरे आत्मा में मैं अपने सिद्ध स्वरूप को अनुभव करता हूँ, मेरे परमात्मा को मैं अनुभव करता हूँ, और मेरे अनुभव की बात तुम सुनने को आया, तुम ऐसे मेरे परमात्मा स्वरूप के अनुभव की बात को सुनने को आया, तो हम भी तुम्हारे आत्मा में सिद्धपद की स्थापना कर देते हैं, तुम भी मेरे जैसे ऐसे स्थापना किया। तो वहां प्रशंसा आचार्य भगवान ने किया, उसका रोष क्यों नहीं आता है। कोई कहता है कि तुम करोड़पति हो तो रस आ जाता है, भले ही करोड़पति नहीं हो तो चलो इज्जत तो मिलती है। बाजार में अपनी गाड़ी आगे दौड़ेगी, लोग अपने को करोड़पति मान, रस आता है कि नहीं आता। ये तो महान आचार्य कहते हैं, आचार्य हनुमंत कहते हैं कि तुम भी सिद्ध हो, तुम बनिया हो, फलाना फलाना हो, ये तुम्हारी पर्याय टिकने वाली, ये तो भेष है उतर जाएगा। स्वरूप की भगवान बस उसका रस चढ़ना चाहिए। इस तरह से शास्त्र का प्रारंभ इस तरह से किया है, ये बहुत महान ग्रंथ है, उसका ओपनिंग ऐसा हुआ है, ग्रांड गाला ओपनिंग, मैं भी सिद्ध तुम भी। क्या कहा, भावार्थ ऐसा है कि उस उसलिए वचन द्वारा कहने में आई है, जो कोई उपादेय वस्तु अपना शुद्ध स्वरूप सिद्ध स्वरूप उसका अनुभव करने से फल प्राप्ति है, सिर्फ वाणी सुनने से फल प्राप्ति, शायद भी ध्वनि सुनी हो उससे क्या हो गया, द्वार सुनी है गया, वाणी सुनने से कोई फायदा नहीं। वाणी का जो वाच्य है शुद्धात्म स्वरूप, तो अनुभव करने योग्य है, इस विश्व में इसके सिवा दूसरा कुछ भी अनुभव करने योग्य। एक अपना शुद्धात्मा ही अनुभव करे, समय होगा अनु इतना ही अनुभवनीय है, इतना ही सत्य अनुभवनीय है जितना यह ज्ञान। क्योंकि ज्ञान के सिवा बोधिसत्ता शांति अब वो जीन वचन आचार्य जी स्पष्टीकरण करेंगे दो नई से बात चली उभय माने उसमें परस्पर विरोध है विषय विरोध है एक द्रव्य को विषय करता है एक पर्याय परंतु उस विरोध को ध्वंस में नाश करने का ऐसे भगवान की वाणी जिन वचन ऐसे हैं विरोध मैंने परस्पर वैर भाव ठीक विरोध मैंने वैर भाव कर के साथ जो पक्षपात को परस्पर वैर भाव है एक सत्व को मैंने मौजूदगी जिसकी है ऐसा जीव पदार्थ को द्रव्यार्थिक नहीं द्रव्य रूप कहता है वही सत्व को पर्यायार्थिक नहीं पर्याय रूप कहता है इसलिए परस्पर विरोध है द्रव्य नित्य है पर्याय अनित्य है तो परस्पर विरोध हुआ क्या नहीं जिस सत्व को आप नित्य कहते हैं उसी सत्व को अनित्य भी कहते हैं आपको कुछ कहना है क्या बात है जो नित्य हो है, वो अनित्य हो नहीं सकता अनित्य हो गए वो नित्य हो नहीं सकता नित्यता है इसलिए नित्यता है इसलिए अनित्यता और नित्यता है इसलिए अनित्यता फिर भी उसमें विरोध जैसे एक मकान उसके कितने एलिवेशन होते हैं चार दिशा के चार एलिवेशन पूर्व दिशा से ऐसा दिखता है ऐसा कोई किला हो पश्चिम दिशा से ऐसा दिखता है कि कोई बंगला हो उत्तर दिशा से ऐसा दिखता है कि कोई झोपड़ी हो एलिवेशन अलग अलग निकालते हैं कि नहीं निकालते मकान कैसा है कि जैसा है वैसा है इधर से देखो तो ऐसा है उधर से देखो तो वैसा है इसमें क्या आपत्ति है इससे ज्यादा एक मनुष्य है वो तो पुत्र है अपने पिता का है क्या नहीं उसी वक्त अपने पुत्र का वो पिता है क्या नहीं तो एक ही समय में वो पुत्र भी है और एक ही समय में पिता भी है तो ये बात कैसे बन सकती है वो बात भी सकती है वस्तु का स्वरूप का ध्यान करने की पद्धति है सुव्यवस्थित पद्धति है और ऐसी पद्धति इनागम के सिवा अन्यत्र कहीं नहीं नए प्रमाण निक्षेप वाली ज्ञान करने की सिस्टम विश्व के कोई धर्म में नहीं और विश्व के कोई साहित्य में नहीं तो विज्ञान में भी नहीं केवल ज्ञान अहिंसा परंपरा से कोई बिना गलती, इसलिए वो है हमको मुफत में मिली है तो कीमत
नहीं है।
जैसे हम तो नोट करके आए गीता पढ़े, रामायण पढ़े, महाभारत पढ़े, वो पढ़े, वो पढ़े, वेदांत पढ़े, निनागम पढ़े, सब मालूम पढ़े, अर्थ को जानने की जो सिस्टम है नहीं है तो उसकी कीमत आती है क्या, उसकी कीमत आती है वरना ठीक है शास्त्र में सब पड़ा है। इसके ज्ञानियों के घर में पड़ा है, लोग सामने भी देंगे हाथ में उठाते हैं क्या पढ़ाए, बहुत मूल्यवान थी क्या है ये, बहुत मूल्यवान थी क्योंकि इतनी वाणी है और आत्मा के स्वरूप को दिखाने वाली कि जिसको देखने से संसार के सब दुख का नाश हो जाए और सादे अनंत सुख की प्राप्ति हो जाए, ऐसी कीमती चीज है। परस्पर जो विरोध है उसकी नेतनशील है, उसी में मैंने नाश विरोध नहीं दर्शाती, जिसको जीन वचन सुन करके विरोध मालूम पड़ता है उनको अपनी बहुत बड़ी गलती से ऐसा होता है। अच्छे अच्छे विद्वान लोग तो इधर ऐसा लिखे उधर ऐसा क्या करें, लेकिन वो दोनों में कोई विरोध नहीं है, ऐसा ज्ञान होना ऐसी समझ में होती है और वो ऐसी समझ होने का करने का भी एक तरीका होता है, वो प्रयोजन पूर्व बात आचार्य करना को सुनो वरना तुमको उलझन बढ़ जाएगी चक्कर में। इस तरह से